आस्तिक अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था और सबकी नजरें अनंत के ऊपर थीं, और अनंत इस समय भूमि की बेगुनाही के लिए केस लड़ रहा था, उसका वकील बनकर। भूमि की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और अमृता भूमि के साथ खड़ी थी। उसने भूमि के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि भूमि ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अगर भगवान भी आकर ये कहेगा कि भूमि ने चोरी की है, तो भी अमृता इनकार कर देगी। उसे अपनी दोस्त पर इतना ज्यादा भरोसा था। अनंत उसके बाद सबको देखता है और फिर अमृता से कहता है, अमृता तुम मुझे ये बताओ कि जब भूमि ने तुम्हारी अलमारी में हार रख दिया था तो उसके बाद क्या हुआ था। मुझे हर चीज डिटेल में बताओ, और वो भी सोच समझकर, एक भी चीज छुटनी नहीं चाहिए। अमृता हाँ में सर हिलाती है और फिर याद करने लगती है। वो अनंत को देखते हुए कहती है, भाई भूमि मुझे तैयार कर रही थी और तभी मामी बुआ मेरे कमरे में हार लेकर आती हैं। उन्होंने वो हार मुझे दिया और वो कमरे से चली गईं। मुझे वो हार पहनना नहीं था क्योंकि मैंने बहुत सारे गहने पहने हुए थे, इसीलिए मैंने भूमि से कहा कि वो हार अलमारी में रख दे। भूमि ने मेरी आंखों के सामने वो हार अलमारी में रखा और अलमारी बंद कर दी थी। उसके बाद भूमि ने मेरे माथे पर दुपट्टा सही किया और फिर वो मुझे लेकर नीचे गार्डन में आ जाती है। इसके बाद जब हम लोग वापस कमरे में गए थे उस हार के लिए, तो बस हार का डब्बा ही था, हार गायब था। अनंत ने सारी बात सुनी और उसके बाद कहा, तो इन सब के दौरान एक मिनट भी ऐसा था जब भूमि तुम्हारी नजरों से दूर हुई हो? अमृता ने याद करते हुए कहा, नहीं, एक पल भी ऐसा नहीं था जब भूमि मेरी आंखों से ओझल हुई हो। वो सारे वक्त मेरे साथ ही थी। मेरे कमरे से निकलने से लेकर मेरे कमरे में वापस जाने तक भूमि मेरे साथ ही थी। अनंत हाँ में सर हिलाता है और फिर से कहता है, तो ये बात साबित हो गई है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड कहते ही आस्तिक अनंत को घूर कर देखने लगता है, तो अनंत जल्दी से कहता है, मेरा मतलब है राजा साहब, ये बात साबित हो गई है कि भूमि ने उस हार को नहीं चुराया है, क्योंकि चश्मदीद गवाह खुद अमृता ने ही ये बात कबूल की है कि भूमि हर वक्त उसी के साथ थी। अब भूमि की कोई जुड़वा बहन या इसका कोई हमशक्ल तो है नहीं जो इसके बदले उस हार को चोरी करेगा। इसके अलावा हम में से किसी ने भूमि को उस हार को ले जाते हुए नहीं देखा है, तो ये बात तो यही साबित हो जाती है कि भूमि का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो राजा साहब, भूमि इस केस में निर्दोष साबित होती है। और अब बात करते हैं असली दोषी की। अमृता, तुम मुझे ये बताओ कि अपने कमरे से जब तुम भूमि के साथ बाहर निकली थी और जब तुम वापस अपने कमरे में आई थी, तो इस बीच में तुमने कुछ अजीब सा देखा है या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजरों के सामने तो होगा लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा? ठीक से याद करने की कोशिश करो। अमृता सोचने लगती है और सोचते सोचते वो उस समय को याद करने लगती है जब भूमि उसे तैयार करके अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आई थी। अमृता ने जल्दी से कहा, हाँ भाई, मुझे याद आया, जब मैं और भूमि अपने कमरे से निकले थे तो एक नौकर ऊपर सफाई कर रहा था, लेकिन जब हम वापस गए तब वो वहां पर नहीं था। आस्तिक की आंखें छोटी हो जाती हैं अमृता की बात सुनकर, और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आकाश भी हैरान रह जाता है। लेकिन अनंत ने अमृता से कहा, तो अमृता, यहाँ पर सारे नौकर मौजूद हैं, तो मुझे बताओ कि इनमें से वो कौन सा नौकर है जिसे तुमने ऊपर अपने कमरे के पास देखा था। अमृता उन सारे नौकरों को देखती है और उनमें से उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सबको देखने के बाद वो ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं भाई, यहाँ पर वो है ही नहीं। आस्तिक गुस्से में खड़ा होता है और सभी नौकरों पर चिल्लाते हुए कहता है, वो कौन है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है? सारे नौकर डर जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, राजा साहब, वो नया आदमी आया है ना, जो अभी कुछ दिन पहले ही बाकी नौकरों के साथ काम के लिए रखा गया है। क्या नाम है उसका? याद आया राजा साहब, उज्जवल, वो यहाँ नहीं है। सारे नौकर धीमी धीमी आवाज में कहने लगते हैं, हाँ, वो उज्जवल यहाँ नहीं है। अरे हाँ, वो नौकर उज्जवल, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, बाकी सब यहीं पर मौजूद हैं। आस्तिक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है उज्जवल? आस्तिक अपने गार्डों की तरफ गुस्से में देखता है। गार्ड्स आस्तिक के इशारे को समझते हुए जल्दी से सतर्क हो जाते हैं और उज्जवल को तलाश करने निकल जाते हैं। भूमि तो बेगुनाह साबित हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी इस बात को लेकर हैरानी थी कि पहली बार उस पर किसी ने ऐसा इल्जाम लगाया है, वो भी बिना सोचे समझे। अगर अरुणिमा और अमृता भूमि पर विश्वास नहीं करते तो भूमि इन सबके सामने चोर साबित हो जाती। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि रॉयल गार्ड्स अपने साथ उज्जवल को घसीटते हुए लेकर आते हैं। वो उज्जवल को सीधे आस्तिक के पैरों में फेंकते हैं और एक रॉयल गार्ड कहता है, राजा साहब, ये आदमी पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे गार्ड्स ने रोक लिया था और इसके सामान की तलाशी लेनी चाहिए, पर ये अपना सामान दिखाने को राजी ही नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इसे बाहर नहीं जाने दिया। आस्तिक गुस्से में उज्जवल को देख रहा था, जो अपना चेहरा नीचे करते हुए डर से कांप रहा था। आस्तिक ने रॉयल गार्ड्स को इशारा किया तो रॉयल गार्ड्स जल्दी से आते हैं और उज्जवल की पोटली को खोलने लगते हैं। वो सारी पोटली को इधर से उधर कर देते हैं। तभी उनकी नजर कपड़े से बंधे हुए एक छोटे से लाल टुकड़े पर जाती है। वो जल्दी से उस लाल टुकड़े को उठाकर उसे खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर वही हार है जो प्रणाली ने अमृता को दिया था। अमृता जल्दी से कहती है, बड़े पापा, यही है वो हार। उज्जवल जल्दी से अपनी जगह से उठता है
और आस्तिक के पैरों में गिरते हुए कहता है, माफी राजा साहब, माफी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैं ऊपर की सफाई कर रहा था जब मैंने खिड़की से देखा कि राजकुमारी जी को यह हार तोहफे में मिला है, पर राजकुमारी जी ने इस हार को पहना ही नहीं था। हार देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने गलती कर दी है राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।